आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है गिन्नी। शुरू करें आज का पाठ नंबर 12। तो आपने अपनी किताब में देखी, सबसे पहले है नागार्जुन। आज हम हमारे देश के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान नेता हुए हैं जिन्होंने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है नागार्जुन। प्राचीन भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, रसायन का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो प्राचीन पहले के भारत में नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालुका ग्राम में हुआ। उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। तो नागार्जुन जी कौन थे? एक रसायन शास्त्री थे। वो बचपन से ही उनमें प्रतिभा थी, काम को कुछ करने की लगन थी। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के अंचल के बालुका गांव में हुआ था। उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया था। उन्होंने क्या, किस चीज की पढ़ाई की थी? वेद और वेदांग के बारे में पढ़ा था। कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। वह बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। तो नागार्जुन ने क्या किया? बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु कर्म पर कार्य का विवरण मिलता है। केमिस्ट्री जो होती है उसके क्षेत्र में एक रस हृदय नाम का कोई ग्रंथ है जिसके अंदर धातु क्रम पर कार्य का विवरण मिलता है, मतलब उन्होंने इस पे काम किया है। उन्होंने पारे को शोध कर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की। मतलब कि क्या किया? पारा होता है गुस्सा, उसको जानकर उसको भस्म करने की भी विधि प्राप्त की थी, मतलब जानी थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। चिकित्सा मतलब जो हमारा मेडिकल चेकअप होता है, ये सब। पहले के लोग पता क्या करते थे, किसके पास जाते थे? पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे, पहले जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान होता था, जिन्होंने बहुत सारे वेद पुराण ये सब पढ़ा होता था, वो पुरानी जड़ी बूटियों से आपका क्या करते थे? इलाज करते थे। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन जी एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, वो बहुत ही दार्शनिक थे और उन्होंने एक शून्यवाद नाम से एक दर्शन लिखा था जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय भी इन्हें ही है। जो बौद्ध धर्म का कोई एक संप्रदाय है, महायान संप्रदाय, उसका माध्यमिक सिद्धांत को शुरू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे वेद पढ़ा है, बौद्ध दर्शन पढ़ा है, और इनमें अलग अलग तरह की बहुत सारी संबंध स्थापित कर मान्यता हासिल कर भारत की राष्ट्रीय एकात्मकता में महान योगदान दिया है। भारत को एक राष्ट्रीय एकता वाला शहर बनाने के लिए, एकता वाला देश बनाने के लिए बहुत योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति में नागार्जुन सागर किया गया है। एक आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा नदी पर बांध बना है जिनका नाम उनके नाम पर दिया गया है, नागार्जुन सागर। ठीक है, तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? नागार्जुन। चित्र में देखिए नागार्जुन जी को। चर्चा कीजिए नागार्जुन की जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है। हमने अभी नागार्जुन की जीवनी के बारे में पढ़ा, तो इनकी जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है? वो क्या थे? बहुत ही प्रतिभाशाली थे। जो चीज पढ़ते थे वो अच्छे से पढ़ते थे। तो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो भी हम जिस चीज में भी पढ़ रहे हैं, इन्होंने रसायन शास्त्र किया था, जिस चीज में भी हम पढ़ते हैं वो मन लगाकर पढ़ें और क्या करें, उसी में अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं। आगे है जगदीश चंद्र बसु। भारत के एक महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में रामायण एवं महाभारत का अध्ययन किया। ये जब बहुत छोटे थे तभी इन्होंने क्या किया था, रामायण और महाभारत का अध्ययन किया था, पढ़ा था। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिम्नास्टिक एवं मुक्केबाजी का शौक भी रखते थे। विद्यालय समय में अपनी बचत के समय व रिक्त समय को पेड़ पौधों एवं जीवों को पालने में संभाल लगाते थे। जब स्कूल में वो फ्री होते थे, खाली होते थे, तो वो किसको देखते थे? पेड़ पौधों की देखभाल करते थे, जीव जंतुओं को पालने में और उनको संभालने में लगाते थे। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में अनेक आविष्कार किए। भौतिकी होती है फिजिक्स और जीव विज्ञान होती है बायोसाइंस। उन्होंने भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों में ही बहुत सारे आविष्कार किए। उन्होंने बिना तार संबंध जोड़े 23 मीटर दूरी पर विद्युत घंटी बनाकर तथा पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाह का प्रदर्शन किया। ये सब फिजिक्स के प्रोजेक्ट होते हैं जो उन्होंने किए थे। उन्होंने क्या किया था, 23 मीटर दूर पर रखी एक विद्युत घंटी बनाई थी जिनके अंदर उन्होंने कोई भी तार नहीं जोड़ी थी 23 मीटर की दूरी पर, उन्होंने उस चीज का आविष्कार किया था और पिस्तौल चलाकर विद्युत तरंगों के प्रवाहन का भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने पिस्तौल चलाकर दिखाई थी कि विद्युत तरंगे, बिजली की तरंगे कैसे दिखती हैं। इनकी खोज मार्कोनी और अन्य वैज्ञानिकों से अधिक उन्नत थी, परंतु उन्होंने इसका पेटेंट नहीं कराया। पेटेंट होता है कि कोई भी चीज जो आपने आविष्कार की हो वो अपने नाम कर लेना, अगर वो किसी और को जरूरत कर यूज करनी है तो वो क्या करे, आपसे पहले पूछे, परमिशन ले, उसको क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। तो क्या था, इनकी मान्यता थी कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति है। ये मानते थे कि जो साइंटिस्ट जो भी खोज करते हैं उन पर सबका हक होना चाहिए, उस पर किसी का एकाधिकार उचित नहीं, उस पर किसी एक इंसान का अधिकार उचित नहीं है। वास्तव में भारतीय सोच सदा यही रही है। उन्होंने क्या सोचा कि इस पर सभी का हक है, इस पर किसी एक इंसान का कोई हक नहीं है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि वे पेड़ पौधे संवेदनशील होते हैं, कि पेड़ पौधों को भी सुख दुख का पता चलता है, उन्हें भी कुछ चीजों का एहसास होता है, वे भी हमारी तरह दुख एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। यही मैंने बोला अभी, कि पेड़ पौधों को भी क्या होता है, दुख और सुख का पता चलता है। उन्होंने समाज के सहयोग से बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। उन्होंने समाज वालों से मदद लेकर किसकी स्थापना की, बसु विज्ञान मंदिर। चर्चा कीजिए और लिखिए, बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा विद्युत घंटी, और दूसरा आप ढूंढ कर लाएंगे कि बिना तार के कौन कौन से यंत्र चलते हैं। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है कोई भी चीज अगर जिसका आप आविष्कार करो तो उसको अपने नाम करा लेना, अगर किसी और इंसान को वो चीज यूज करनी है तो वो आपसे परमिशन लेके पूछ कर फिर ही यूज करे, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु ने अपने आविष्कारों का पेटेंट क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं कराया, क्योंकि वह क्या सोचते थे कि वैज्ञानिक खोजें सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, मतलब कि जो विज्ञान खोज करते हैं, विज्ञान खोज करते हैं वो क्या होती है, सबकी संपत्ति होती है, उस पर किसी एक का अधिकार उचित नहीं होता। आगे है भगिनी निवेदिता। चित्र में देखिए भगिनी निवेदिता को। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की रहने वाली थी। उनका नाम मार्गरेट नोबल था। उनका नाम क्या था, मार्गरेट नोबल। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा कार्य अपनाया था। उन्होंने पूरे जीवन विवाह नहीं किया था, शादी नहीं की थी, और पूरे जीवन क्या की थी, सेवा की थी। वे अन्य लोगों के दोहरे चरित्र से दुखी थी। उनको अच्छा नहीं लगता था कि जो सामने वाला, मतलब उनके मुंह पे कुछ और था और पीछे कुछ और था, उसको बोलते हैं दोहरा चरित्र। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद को जानते हो ना आप लोग, तो उसी समय में इन्होंने स्वामी विवेकानंद का व्याख्यान सुना और उनसे प्रभावित हुई, और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया, और उनकी बातों से वो इतना प्रभावित हुई कि उनको अपना गुरु मानने लगी। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें निवेदिता नाम दिया। वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। उन्हें लगता था कि मानव मनुष्यों की सेवा करना ही अपना धर्म मानती थी। कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई एवं रोगियों की सेवा की। प्लेग बेटा एक ना रोग हो गया था, मतलब एक बीमारी फैल गई थी कोलकाता में पुराने समय में, तो उस समय में उन्होंने क्या की थी, सफाई कार्य में उनकी मदद की थी और रोगियों की भी मदद की थी। उनसे प्रभावित होकर अन्य लोग आगे आए। बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत कार्य किया। जब बंगाल में पहले बाढ़ आ गई थी तब भी उन्होंने लोगों की सेवा की। इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्र ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। रविंद्र ठाकुर ने उन्हें क्या कहा? लोक माता, कि ये सबकी मदद करती हैं, हमेशा सबका साथ देती हैं। ठीक है, आगे है, सोचिए और लिखिए, अपने आसपास के उन लोगों के नाम लिखिए जो बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करते। अपने आसपास आपके ऐसे जून से लोग हैं जो किसी बिना भेदभाव के ऐसे नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन सबकी क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके नाम लिखिए। आप अपने आसपास पड़ोस में किसी के भी नाम लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हो और जो आपको लगता हो कि वो किसी से भेदभाव नहीं करते। आप अपने विद्यालय में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं बताओ? आप अपने स्कूल में क्या क्या सेवा करते हो? कभी स्कूल में जो अंकल आंटी काम करते हैं उनकी हेल्प करते हो? टीचर की हेल्प करते हो? अगर आप करते हो तो आप लिखो यहाँ पे कौन सा काम करते हो। यदि आपको विद्यालय से बाहर सेवा करने का अवसर मिले तो आप कौन कौन से सेवा के कार्य करोगे? देखो, जैसे अगर मुझे कभी मौका दिया जाए तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मैं अपने से बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखूं, बाहर जाकर हमेशा अगर कहीं मेरी जरूरत है तो मैं उनकी जाके मदद कर दूं। तो आप क्या करोगे, ऐसा कौन सा काम करोगे? अगर बड़े बुजुर्ग को रोड क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ना। टीचर को हेल्प की जरूरत है तो हम उनका काम कर सकते हैं। ठीक है, भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी? वो तो इंग्लैंड की रहने वाली थी ना, वो क्या करने आई थी? लोगों की मदद करने आई थी। जब बंगाल में बाढ़ आई थी और कलकत्ता में प्लेग फैला था तो वो लोगों की मदद करने आई थी। अब है महात्मा गांधी, चित्र में देखिए महात्मा गांधी, इनको तो जानते ही होगे ना, है ना। महात्मा गांधी के जीवन पर बचपन से ही उनकी माँ के संस्कारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। वो बचपन से ही अपनी माँ को बहुत मानते थे। उनके द्वारा बचपन में देखे गए नाटक सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार से प्रभावित होकर उन्होंने आजीवन सत्य का पालन व माता पिता की सेवा का संकल्प किया। उन्होंने बचपन में एक नाटक देखा था सत्यवादी हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने क्या किया था, अपने मम्मी पापा को कांधे पर बिठाकर उनको चारों धाम की यात्रा कराई थी और सत्यवादी हरिश्चंद्र हमेशा सच का साथ देते थे। तो महात्मा गांधी भी उन्हीं की तरह थे, वे हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते थे और क्या करते थे, हमेशा सत्य का साथ देते थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले का भेद मिटाया। उन्होंने छुआछात की क्रूर प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया और हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने गोरे और काले के भेद को मिटाया था। हमें कभी भी ना ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो गोरा है वो काला है, इसके अनुसार हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये सब चीजों को खत्म किया था, छुआछात की बीमारी को भी खत्म किया था और क्या किया था, हरिजनों के उद्धार के लिए काम किया था, लोगों के उद्धार भले के लिए काम किया था। वे ग्राम स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, साथ ही वे कुटीर उद्योग द्वारा गांवों के स्वावलंबी बनना चाहते थे। वे एक कोई गांव स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और वो कुटीर उद्योग के द्वारा गांव को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। ठीक है, अपनापन बनाना चाहते थे कि लोगों में क्या रहे, अपनापन रहे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाकर भारत को आजादी दिलवाई। अब है, सोचिए और बताइए, क्या आपने कोई सेवा कार्य करने का संकल्प किया है? अपने आप से कोई ऐसा प्रॉमिस किया है कि आप बड़े होकर ऐसे करोगे ऐसे करोगे? देखो, और कोई सेवा करना या ना करना, लेकिन अपने मम्मी पापा की सेवा हमेशा करना। ठीक है, आगे है, आपने कौन कौन से नाटक देखे हैं तथा अपने जीवन में क्या क्या संकल्प किया? आप क्या देखते हो, कार्टून ही देखते रहते हो या कुछ ढंग का भी देखते हो? रामायण महाभारत देखते हो कि नहीं, तो उसके बारे में लिखना है। यह भी कीजिए, पुस्तकालय से श्रवण कुमार की कहानी की पुस्तक ढूंढकर पढ़िए। श्रवण कुमार की कहानी आप पढ़कर आइएगा अपने घर से, बहुत अच्छी कहानी है। आगे है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर में हुआ। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि से सबको मोहित कर लेते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था। बचपन में वे बांसुरी की मनमोहक ध्वनि को से सबको प्रभावित कर लेते थे। वो क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे और अपनी अच्छी आवाज से सबको मोहित कर लेते थे। उनके शिक्षक जयपाल नाग ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की सलाह दी। जब उनके टीचर ने उनको देखा कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं तो उन्होंने उनको क्या कहा, जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई करने जाने के लिए कहा। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे श्री आनंद पांडे के संपर्क में आए। तो उन्होंने क्या कर ली, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली तो वे एक आनंद पांडे के नाम के इंसान से मिले, उनसे भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जाना। उन्होंने उससे क्या जाना, भारतीय संस्कृति के रहस्य, भारत की संस्कृति के बारे में जाना। ठीक है, उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता व हितोपदेश का अध्ययन किया। उन्होंने क्या क्या पढ़ा, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, गीता पढ़ी और हितोपदेश, हित के लिए उपदेशों का अध्ययन किया। उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी, मतलब वो क्या होने लगे, चारों तरफ प्रसिद्ध होने लगे। बिरसा मुंडा के प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे, उनके प्रवचन को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। किसी ने उनकी शिकायत अंग्रेजों से कर दी, ठीक है, उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और 2 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब शिकायत कर दी किसी ने उनकी अंग्रेजों से, तो उन पर क्या कर दिया कि वो देशद्रोही है, मतलब राज्यद्रोही है, और उसका आरोप लगाकर उनको 2 वर्ष के लिए जेल की सजा हो गई। वहीं से उनके मन में क्रांति का भाव आया, ठीक है, जेल से छूटकर वे एक महान क्रांतिकारी बने। अब है सोचिए और लिखिए, आपके गांव या शहर में प्रवचन देने कौन कौन आते हैं, कोई ऐसे गुरुजी जिनको आपको सुनना अच्छा लगता हो, आपने उनके बारे में लिखना है, ठीक है। बिरसा मुंडा के मन में क्रांति का भाव क्यों आया होगा, क्योंकि क्या देखा उन्होंने, उन पर क्या लगाया था, राजद्रोह का आरोप लगाया था, इसकी वजह से उनके मन में क्रांति का भाव आया था। आप अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं, अच्छे लोगों से क्या क्या सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, छोटों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो जो जो आप सीखते हो ये सब लिखो, और हमें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, भगिनी निवेदिता ने विदेशी होते हुए भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर भारत में जीवन यापन कर समाज की सेवा की। भगिनी निवेदिता विदेशी थी, इंग्लैंड की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसानियत के नाते सबकी क्या की, सेवा की, और भारत आकर क्या किया, अपना जीवन यापन किया लोगों की सेवा करके। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा की राह पर चलकर भारत को आजादी दिलवाई। वो हमेशा सच बोलते थे, तो उसी की राह पर चलकर उन्होंने क्या करी, भारत को आजादी दिलवाई। बिरसा मुंडा वेदों के ज्ञाता और महान क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा को बहुत सारे वेदों का ज्ञान था और वो बहुत ही बड़े महान क्रांतिकारी बने, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा। नीचे देखिए क्या लिखा है, प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। मतलब आप प्रेम करो सबसे, त्याग की भावना मतलब कि अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखना, अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखना, लोग को सबसे ऊपर रखना और उनकी मदद करनी है। इस जीवन को सफल बनाओ, अगर आप ये सारी चीज करेंगे, बड़ों की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। चलिए अब ये मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप लोग, प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ, प्रेम त्याग शुचिता अपनाओ, इस जीवन को सफल बनाओ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13, त्योहार पर्व और जयंती।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।